April 18th, Gary, Vancouver.
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिषे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम् सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु वाल से श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद और स्वत श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। मेरी तो इच्छा यहां थी कि हिंदी में ही बोलूं। आई वांटेड टू स्पीक हियर इन हिंदी बट आई सी audience are mostly English going person. But I am speaking Hindi and Ramchandra Prabhu will translate, it will be better. That I can express my modes very well in Hindi. So I request that Ramchandra will be speaking. Also, time to time, I may speak English also. सबसे पहले मैं इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर के व्यवस्थापक श्री गोयल जी और यहाँ के महंत और यहाँ के पुजारी जी का को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दया करके मुझे यहाँ कुछ भारतीय संस्कृति और ज्ञान के संबंध में कुछ बोलने का मुझे अवसर मिला है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड सो मेनी ऑडियंस ऑफ क्या कौन जाएगा वैंकूवर नॉट ओनली वैंकूवर बट आई सी दैट फ्रॉम अमेरिका हियर देयर डोरमैन सो मेनी डिवोटी दैट प्रेजेंट हियर। एक समय कलयुग आरंभ होने जा रहा था और उसमें भारतवर्ष के 88,000 ऋषि गोमती नदी के किनारे नमिषारण्य में उपस्थित हुए। वे सोच रहे थे कलयुग आ रहा है, इस कलयुग की में स्त्रियां
अपने धर्म को छोड़ देंगे, पुरुष लोग भी अपने धर्म को छोड़ देंगे। और की तो बात क्या, सन्यासी लोग भी गृहस्थों से अधिक आराम और उपभोग करेंगे। बड़ी बड़ी आलीशान मंदिर महलों में रहेंगे, जो व्यवस्थाएं गृहस्थों को नहीं हो सकेगी वो लोग बल्कि इससे अधिक उपभोग करेंगे। कलयुग में आयु छोटी हो जाएगी और लोग बड़े दुर्भागा होंगे, करेंगे काम सुख के लिए, हो जाएगा दुख। वे लोगों की उम्र भी बहुत छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से कलयुग भयंकर आ रहा है। सोचने लगे हमें क्या करना चाहिए। रामचंद्र,
हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल द गुरु देव शोड हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टेम्पल, प्रेजिडेंट अरोड़ा साहब एंड वर्मा साहब एंड अदर्स एंड पुजारी एक्सेट्रा, दैट दे अलाउड टू स्पीक ऑन द इंडियन वैदिक कल्चर। And then Srila Gurudev is so much delighted to see in this place of Canada, Vancouver, so many devotees, not only from Vancouver, but from other places of US also have gathered here together. So Srila Gurudev is explaining that once upon a time, when Kaliyug just started, so many sages, 88,000 sages, they gathered together at the bank of river Gomti, Naimisharan, and they were very much worried that Kaliyug has come. In this Kaliyug, all the women and men, they will give up their dharma, religion, their duties. Even sannyasi, they will be living more opulently than grihastha. Their living places will not be places, will be palaces. And they will all those facilities, even those ordinary grihastha doesn't have. They also, in this Kali Yuga, people will be very much unfortunate. They will try to endeavor to have happiness, but it will result into miseries. Ayu, age will be also very small, and they will be very unhappy. This is the period of Kali Yuga. What should they do?
Saunak Rishi asked Srila Sut Goswami that, "Oh Sut, you are very high class of disciple of Srila Sukadev Goswami. You have heard from him essence of all Ved, Upanishad, Gita, Srimad Bhagavat. And from Parashar Rishi, you have heard all Vedic literature like Ved, Upanishad. So you know everything. We want that now Kaliyug coming very short. The life will be very short. And they will be in the persons in the Kali Yuga, they will be unlucky. So you should tell us that how soul will be had. He did not ask how we will be happy. Because they used to know that this body is not myself. I am not this body. We are soul. Eternal servant of Supreme Lord Krishna. So they asked how soul will be happy. Hearing this, Sut Goswami became very happy. And he remembered all the sweet pastimes of Krishna and his instructions. And then he did pranam to his Gurudev and told after that, Savai Punsang Paro Dharmo Jato Bhakti Radhok Kaje Ahetuka Apradhyata Jayatma Samprasivita. He became very happy and then remembered all the sweet pastimes of Krishna. And then he began to tell, oh, Sanat Rishi, you should hear. The Paramatharma, transcendental religion of all the beings, not only human, to serve Supreme Lord. Continuously, Taildharavat Avichinna Gati Se Nirantarjamai Bhakti, and without any reason, naturally, then it is Paramadharma, and by doing so, any soul can be happy. Otherwise, never he can be happy. Also, one disciple of Srila Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, has written a parallel slope, but some all inclusive. ऐसा श्लोक जिसमें पहले पहले के जितने भी भक्ति की परिभाषाएं थी सब उसके अंतर्गत थी. ऐसा सुंदर श्लोक भक्ति के लिए सुनाएगा. What was that? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाभृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति. Try to hear very patiently and carefully. Because we are doing all bhakti. But what is bhakti really? We don't realize. He is telling, वो कह रहे हैं कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति. अपने तन से आप लिख लीजिएगा, बोल दीजिएगा. कोई अपने तन से, मन से, वचन से और भावना से कृष्ण को प्रसन्न होने वाली, कृष्ण के लिए सुखदायी जो चेष्टाएं हैं, वो तैल धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण में लगी रहे और भक्तों के, गुरु के अनुगत्य में हो, ये भक्ति हो. भक्ति तो हुई किंतु यदि उसमें अन्नाभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी दूसरे उद्देश्य से हो अपने लिए बने भक्ति, तो वो भक्ति नहीं शुद्ध है, वो सकाम भक्ति है। ठाकुर जी के मंदिर में आए लक्ष्मी नारायण जी के यहां और हाथ जड़े जोड़ करके बोले जी प्रभु हमारा लड़का बहुत बीमार है, वो ठीक हो जाए तो आपको हम साल चढ़ाएंगे या मिठाइयां चढ़ाएंगे। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये अपने लिए हो गई, सकाम हो गई, भक्ति से नीचे हो गई। इसलिए कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त किसी प्रकार के भी अपने लिए कोई भी चेष्टा न हो, इसको भक्ति कहते हैं। और वो ज्ञान और कर्म के अधीन न रहे, उससे ढकी हुई न रहे। तात्पर्य क्या, हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, ये भी कर्म है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो कर्म ऐसा हो जो भक्ति से संबंधित हो, भगवान से संबंधित हो। बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, फल लाने के लिए, किस लिए, अपने लिए, तो ये कर्म हो गया। मैं जा रहा हूं बाजार से, ये भगवान की सेवा के लिए फल मूल कंद लाने जा रहा हूं, ये भक्ति। यदि कर्म के साथ में ये भक्ति हुई कर्म से, तो उससे ठकी हुई हो जाती है, उसको कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। और बिना ज्ञान के भी नहीं जा सकते, तो कैसा ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं, सारा जगत ब्रह्म है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, अहम् ब्रह्मास्मि। यदि ऐसा ज्ञान हो तो ये भक्ति का विरोधी है, ये भक्ति को ढक देता है। किंतु कृष्ण का तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, हम क्या हैं, भगवान कौन है, भगवान का प्रेम कैसा होता है, राधा जी का तत्व क्या है, गोपियों का तत्व क्या है, ये तत्व भक्ति का सहायक है, कर्म को नहीं ढकता। इसलिए हमको ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए, किंतु ज्ञान से ही भक्ति हो जाएगी ये नहीं बात है, सहायक है। इसलिए जो भक्ति में अपना कोई सुख की बात नहीं हो और ज्ञान और कम से ही भक्ति होती है ये विचार न रहे, और अपने तन मन वचन और भावना की चेष्टाओं को कृष्ण को के लिए ही हो, तो उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं, अर्थात उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। थोड़ा सा बोल दीजिए जो कहा।
In our scriptures, so many definitions have been given about bhakti. But our Srila Rupa Goswami Pad, who had been pioneer disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has given a definition of bhakti. It is so exclusive definition that it includes all the previous definition of scriptures in itself, and also give very precisely and perfectly that what is Uttama Bhakti. It says that we should try to understand what is Bhakti. Anya Abhilashita Shunyam ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कृष्ण अनुशीलनम अनुकूलेन, दैट बाय आवर तन मन वचन बॉडी माइंड एंड स्पीच एंड बाय आवर ऑल द फीलिंग्स वी शुड एंडेवर, वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्लीज कृष्णा। Our all the efforts should be for the pleasure of Krishna, and these efforts must be perpetual, continuous, without any break, and in accordance with and in following of our spiritual master. This is called bhakti. But we have to understand that what is uttama bhakti, what is high class of bhakti. This bhakti should be anabhilashita shunyam. There should not be any other desire than to please Krishna. If we come to temple, to Lakshmi Narayan temple, and then we pay our obeisances, but we say, "Oh Thakurji, my son is very sick. Please, he should be cured. I will give one shawl to you, or I will offer so many sweets." Is it pure bhakti? No. This is sakam bhakti. Therefore, our endeavor should be free from any other desire. Also, it should not be covered by our karma. Srila Gurudev is explaining, we all are forced to do some karma. Karma means action. We are all forced to do some karma. We are going to market. We are going to purchase vegetable and fruits. If we are going to purchase all these things for ourselves, then it is karma. This will bind us. If we are going to purchase vegetables and fruits for Krishna, then this karma is bhakti. Therefore, all the karma should be for Krishna, so that it should not cover our bhakti. Also, important thing is that it should not be covered by jnana. We live in this world, jnana means knowledge, is very important. We cannot neglect knowledge. But if we think that we are ourselves Brahm, that no one is other than superior to this Brahm, this type of knowledge, this covers bhakti. This reduces our bhakti. We should not cultivate such type of knowledge. We should try to cultivate, to know what is Jivatma, living entity, what is Paramatma, what is Bhagavan, what is God, what is the God's abode, who is Radharani, what is true love. All these things, all this knowledge, it is favorable to bhakti. But remember one thing, still it is not bhakti. And therefore our all cultivation of knowledge should be in this regard, so that it should not cover our bhakti. Hence we should now understand that what is par uttama bhakti. In fact, uttama bhakti is prema bhakti. It should be free from other desires other than pleasing Krishna. Our all endeavors and efforts in order to please Krishna without being covered by jnana and karma, that will result into uttama bhakti.
Into अध्यक्ष इंद्रियातीत भगवान है कौन? Who is that supreme lord? भगवान इन भागवत इट हैज बीन टोल्ड एते चांस कला उनसा कृष्णस्तु भगवान। सो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण है come in the form of Ram also, He has come also in the form of Nrisimhadev. His Prakash Vaibhav is Lakshmi Narayan. But see, Shankarji Mahadev, he is Bhakta, not Bhagavan. He is like a Vaishnava Guru. So we should respect him like Bhakta, not like Bhakta. Why Krishna is supposed to be Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead? Because we see, if anyone go to see Lakshmi Narayan and he asked him, I also want to be your very dear wife, he will reject. Oh, Lakshmi there, no other. If anyone will go and ask him, oh, we all want to dance and sing in the Rash with you, he cannot do the Rash. Even Sri Ramchandra will, anyone will tell that we want to serve you as your wife. Oh, he tells, I'm very chaste. Oh, Sita is my wife. How I can? And if anyone tells that we want to dance and sing in Rash with you, oh, I cannot do it. You know that when Ramchandra was in forest, Dandakaranya, there were 60,000 of rishis and munis. When they saw Ram, they were doing austerities to be gopis and to be in Rash with Krishna. Ramchandra then told, give benediction, I cannot do Rash. Please, I will make you in Krishna Lila Gopi, when I will be Krishna. And there you can dance and sing. So, anyone cannot do Rash except Krishna. He is personality of Aishwarya and Madhurya both. That is not somehow possible in the Ram, in Lakshmi Narayan, and further incarnation of Krishna. So, Krishna is Supreme Personality of God. Then, I was telling the definition of bhakti.
ये कुछ हिंदी में भी बता दो
हिंदी कहाँ है कुछ
नहीं ये कृष्ण वाली बात ना यहाँ के हिंदी सुनने वाले भी हैं उनको भी बता दो यहाँ के लोग हिंदी के कई औरतें हैं जो ये वाली खास कर बात
हाँ कृष्णा स्वयं भगवान है वे ऐश्वर्य और माधुर्य की मूर्ति है नारायण में केवल ऐश्वर्य है माधुर्य नहीं उनकी कोई जन्म लीला नहीं कोई विवाह की लीला नहीं राश की लीला नहीं रामचंद्र जी की तो जन्म की लीला है किंतु राश इत्यादि नहीं कर सकते हैं उनको कोई भी बांध नहीं सकता यशोदा मैया प्रेम की रस्सी से कृष्ण को ओखल के साथ में बांध दिया किंतु कौशल्या जी कैकई सुमित्रा जी राम को नहीं बांध सकती और न बांधा कभी कृष्ण जसोदा मैया के डर से जब बांधती है तो रोते हैं, राम उन लोगों के डर से नहीं रोते। इसलिए ये कृष्ण की विशेषता है। इसलिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कृष्ण को प्रसन्न कर सके। किंतु एक बात याद रखनी चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही भक्ति का उद्देश्य नहीं है। जो कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण की सेवा कैसे अधिक से अधिक हो सकेगी, यह ममता का भाव भक्ति में होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो यशोदा मैया माखन चुराया कृष्ण ने, कभी ये तो महाचोर हो जाएगा, बज तो बहुत चोरी करेगा यौवन अवस्था में, इसको अभी शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं देखी ये सुप्रीम परब्रह्म है, ये सुप्रीम लॉर्ड ही कुछ न थे, इवन इमेजिन वो रस्सी लेकर के उस असीम को जिसका आदि अंत बीच मध्य कुछ नहीं, बांध करके रहूंगी चाहे जन्म भर बांधू। कृष्ण ने उनका परिश्रम देखा, उनके जूड़े से फूल गिरने लगते और मुख लाल हो गया। मैं अपने बेटे को बांध नहीं सकती, मन ही मन कहा हे नारायण मैं अपने लड़के को बांध नहीं सकती, पुत्र को। तो उसका परिश्रम देकर के कृष्ण अपने आप बंध गए, जो आज तक किसी ने उनको बांधा नहीं आज बंध गए। दूसरी बार एक बार गोपियों ने राधा जी के साथ में कृष्ण को बांध दिया था, किंतु राम इत्यादि रूपों में वो बंधे नहीं। इसलिए जब कृष्ण रोने लगे तो तब कृष्ण को आनंद नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, तो इसको भक्ति नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों? कृष्ण का भला करने के लिए जिसको शिक्षा दे दे, अभी नहीं तो बच युवावस्था में ये महाचोर हो जाएगा, कृष्ण के लिए कर देंगे। और भी जब दधी मंथन कर रही थी तो पास ही में चूल्हे पर दूध औटा रहा था, उस समय जसोदा जी ने देखा कि दूध गर्म होकर के उफन करके गिर रहा है। जसोदा जी ने कहा कि कृष्ण शायद दूध इसलिए गिर रहा है कि कृष्ण हमें नहीं पिएंगे, उनके काम में नहीं लग सकूंगा, इसलिए प्राण देने नहीं अच्छा। यदि जीवन कृष्ण के लिए नहीं लग सका, कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता, तो इस जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। किया छेल केनो वा छाये प्राण कृष्ण लग गया। यदि कृष्ण ही के लिए सेवा नहीं हुई, इस शरीर की रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, वो शरीर भार के समान है। तो यशोदा मैया कहिए नहीं नहीं, मेरे दूध से तो तुम दूध पिएगा, उसे खीर राबड़ी मलाई ये सब तो होगा नहीं, संदेश तो होगा नहीं, इसलिए तुमको रहना जरूरी है। इसलिए दूध गंधी मंथन छोड़ करके कृष्ण के पास में गई, दूध को पानी से छीटा दे करके उसका उबालना दूर कर दिया है। अच्छा, कृष्ण घर उनकी गोदी में थे, पेट तो भरा नहीं था तन पान से, कृष्ण को हुआ क्रोध और दधी का भांड उन्होंने फोड़ दिया। तो कृष्ण को तो क्रोध हुआ, तो भक्ति कैसे होगी? कृष्ण को तो अच्छा नहीं लगा, नहीं
भक्तों को कृष्ण की अपेक्षा, कृष्ण की जो वस्तु है वो अधिक प्रिय है। यदि कृष्ण स्नान करने के बाद में मिट्टी लगा ले तो यशोदा मैया मारेगी थप्पड़। स्नान करा है और तुम गंदा अपने कपड़े गंदे कर दिए, तो भी यही भक्ति है। कृष्ण के लिए सब हो रहा है और चारण मस्तिष्क से कृष्ण लड़ रहे हैं। उन्होंने कौन हाथी कुबल्यापीड़ हाथी उसको खेल खेल में मार डाला और उसका दांत उठा करके वो और बलदेव जी पीर की भांति खून के छींटे लगे हैं। वहीं पर अखाड़ा ने प्रवेश किया। चारण मस्तिष्क कंस की इच्छा के लिए कृष्ण को मारने के लिए उनसे कुश्ती लड़ रहा था, लड़ने की चेष्टा। कृष्ण कहा कि हम बच्चे हैं तुमसे हम कैसे लड़ेंगे। फिर भी उन्होंने हाथ पकड़ करके खींच लिया और कृष्ण बलदेव से चारण मुष्टि का मल्ल युद्ध होने लगा। उस समय कृष्ण को जब अपने वज्र के जैसे घूसे से मारा तो कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ। आज वीर रस आस्वादन करने के लिए हमें मिला, ओ ये प्रसन्न होना भक्ति नहीं है। यद्यपि कृष्ण प्रसन्न हुए, क्यों? वो मारना चाहता है कृष्ण, इसलिए भक्ति अनुकूल रूप से होना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता ही सब कुछ नहीं है। बोलिए तो
कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, ही इज फुल ऑफ स्वीटनेस माधुर्य। अनलाइक नारायण, ही नारायण डज नॉट हैव पास टाइम ऑफ बर्थ, ही डज नॉट हैव पास टाइम ऑफ ही डज नॉट हैव पास टाइम दैट हिज मदर इज बाइंडिंग हिम। ही ऑल पास टाइम बिलोंग टू कृष्णा ओनली। Therefore, this is called Madhurya Leela. Mother Yashoda, she finds Krishna. Though Lord Ram, he showed the pastime of birth, but his mother Kaushalya and Kekayi, she never binds Lord Ram. Krishna, he is crying, he is weeping. He is horrified by the chastisation of his mother. Ram is not, he never cried, he never wept. This is the specialty of Krishna's pastime. This specialty of Krishna's pastime is full of sweetness. Now we should understand one thing very important. Our all the endeavor should be to please Krishna, is it? No, not only to please Krishna, there is something more in it. Not right to understand that our endeavor should be full of love, rag and mindness. Krishna is mind, mamata. Krishna is stealing butter and Mother Yashoda is angry on him. He is having a stick and scolding his son and Krishna is weeping. Why she is doing this thing? She is doing this thing out of love so that my son should not get spoiled in his life. She wants to correct his son. So, though Krishna is weeping, it may not appear apparently that Krishna is pleased, but this is her wish. She wants to bind Krishna, who is unlimited. He is binding Krishna
in Krishna is unlimited. But when Krishna sees that my mother is tired, she is trying to bind me, then she is praying to Narayan. He is my son. Why are you unable to bind him? And then Krishna says, oh, my mother has done so much labor. It's better I should be bound. And the moment he thinks that I should be bound, Mother Yashoda binds him. This is bhakti, because Mother Yashoda is being out of love. There is another instance that Mother Yashoda was giving breast milk to Krishna, breastfeeding, and Krishna was drinking. He was enjoying. At the same time, there was one pot in which milk was there in a stove, and that milk was about to boil. Milk is thinking. Milk is conscious entity in Golokunda. It's thinking. Krishna is drinking milk of his mother. Then what is my use? I will not be of any benefit to Krishna. It is better that I should die. If this body does not come for use of Krishna, then what is the use of this body? I should burn it. So milk starts boiling and coming out of the pot into fire. And then Mother Yashoda says, oh no, don't spoil your life. Krishna is, don't give up your life. Krishna is drinking my milk. But that milk will not be used to make butter, to make sweets. I will make sweets from you. I will make butter from you. So she runs. She keeps Krishna away from herself. Krishna doesn't want it. And she forcefully keeps Krishna apart from him. And then she tries to subside that milk. Krishna is very angry. As much as that he breaks the pot which Mother Yashoda was churning. Now the question arises when Krishna is angry, is it bhakti of Ma Yashoda? Yes, Mother Yashoda is full of love and kindness for Krishna. Try to understand very important point. The devotees like Mother Yashoda, they love Krishna, but they love more all those things which are being used for the service of Krishna. So Mother Yashoda is not only loving Krishna, but also milk which is going to be used for Krishna. Krishna, he lies on the ground and Mother Yashoda chastises him. You have spoiled your clothes. Is Mother Yashoda attached to clothes? Yes, clothes are being used for Krishna. So she is more attached to clothes of Krishna. Similarly, in the other example, Krishna went to Mathura and Kansa has called them for a very big fight that is called wrestling. And there was a wrestling arena in Mathura. Krishna, after killing a big elephant, Kubli appeared. He entered, Krishna and Balaram, they entered into the arena and their body was spreaded with the blood. His blood was sprinkled on their body, blood of Kubli appeared. And Chanur Mustik, they offered for wrestling. Krishna says, you are such a huge and big and powerful. We are a young child. How can we fight? But they started fighting with Krishna and Balaram. So when Krishna and Balaram started fighting with Chanur Mustik, they started taking interest in that fight, in that wrestling, in that duel. They were enjoying it. So does it mean that Chanur Mustik is giving enjoyment to Krishna, so they are doing bhakti? No, this is not bhakti. Though Krishna is enjoying the fighting mode, vigorously, but Chanur Mustik is not serving in the serving mode. They want to kill Krishna. So they are divided of mamta, love and minus. So it is not bhakti.
भरत जी के जीवन से उदाहरण देकर के भक्ति किसको कहते हैं मैं बतला रहा हूं. I'm giving in terms of Bharat about bhakti. Then it will be somewhat clear. रामचंद्र जी को कैदी की इच्छा से महाराज दशरथ जी ने वन में भेज दिया 14 वर्ष के लिए. सीता जी और लक्ष्मण भी राम के साथ में वन में चले गए. भरत जी शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर में ननिहाल में थे. उनको बुलाया गया और इधर महाराज दशरथ की भी मृत्यु हो गई. जब भरत जी अयोध्या में आए तो देखा चारों तरफ शोक उमड़ रहा. भरत जी के लिए कोई भी भरत जी के तरफ देखा नहीं बल्कि कड़ी घृणा के साथ में देखा, बातचीत नहीं किया गया. पीछे से उनको मालूम हुआ कि कैकेयी ने 2 बार मांग लिए थे वर, एक में 14 वर्ष के लिए राम का वनवास और दूसरे के लिए भरत को राजगद्दी. महाराज दशरथ हाराम 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 कह करके सही छोड़ दिया. भरत जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, मैं राम को मनाने के लिए चित्रकूट में जाऊंगा, अपनी सारी सेना को, कौशल्या सुमित्रा मैया को साथ लिया, वशिष्ठ जी को, प्रजाओं को, और चित्रकूट में गए. रात में वहां पर चित्रकूट के आसपास में ठहरे कैंप में और रात में भरत जी कौशल्या मैया के पास में गए. बोले मैया तुम राम को कहेगी कि लौट चलो अयोध्या में तो जरूर लौट जाएंगे, तुम्हारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते. तुम कहो कि राम तुम लौट जाओ अयोध्या में, वहां का राज सिंहासन ग्रहण करो. कौशल्या ने कहा बेटा ऐसा मैं कैसे कर सकती हूं, तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं बेटा तुम ठीक हो, तुम मूर्ति के प्रेम के महासागर हो और राम धर्म की ध्वजा है, हिमालय जैसा है, वो प्रेम में डूब जाएगा किंतु कस से मश नहीं होगा, इसलिए बेटा मैं उसको धर्म छोड़ने के लिए कैसे कहूं? तब एक गुरु वशिष्ठ के पास में गए. गुरु जी ने भी यही उत्तर दिया, बेटा मैं कैसे कहूं जो अपना धर्म छोड़ दे, तो मैं क्या गलत हूं? नहीं तुम भी ठीक हो, किंतु मैं विचार करके कुछ पा नहीं रहा हूं जो तुमसे कहूं. फिर उसी रात में महाराज जनक भी आ गए. दूसरे दिन सभा बैठी, एक तरफ में राम लक्ष्मण सीता जी, दूसरी तरफ में भरत माताएं, एक तरफ में सब वशिष्ठ जी और ऋषि मुनि सब बैठे. महाराज वशिष्ठ जी ने कहा ओ, आज अयोध्या की नाव डगमग कर रही है समुद्र में, कोई खेलने वाला नहीं है, कर्णधार नहीं. अच्छा हुआ महाराज जनक आ गए, ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, ये कोई ना कोई उपाय बतलाए जिससे कि अयोध्या की नाव डूब न जाए. उनकी प्रार्थना सुन करके महाराज जनक ने राम की तरफ में देखा. राम तुम क्या हमारी बात मानोगे? उन्होंने कहा आप तो हमारे पिता और गुरु हैं, क्यों नहीं मानूंगा, जरूर मानूंगा. भक्त की तरफ में देखा,
मेरा आदेश मानोगे निर्णय तथा मुझे स्वीकार रहेगा। आप हमारे पिता के स्थान में भी हैं और गुरु के रूप में भी हैं। ठीक, उन्होंने ध्यान किया शंकर जी का, मैं अपने गुरु को ध्यान करता हूं, जो कहेंगे वही कहूंगा। ध्यान करने के बाद में प्रणाम करके शंकर जी को बोले, देखो भरत की जीत हुई,
जितने लोग वहां थे बड़े प्रसन्न हुए, भरत भी बड़ा प्रसन्न हुए, अब तो हमारी जीत माने उनको अयोध्या जाकर के सिंहासन लेना पड़ेगा। तब महाराज जनक ने भरत की जीत हुई, उनके प्रेम की जीत हुई। प्रेम की भी एक रीति है, रीति क्या है, प्रेम करने वाले को यह सोचना होगा कि तुम्हारा इष्ट देव कैसे किस बात में सुखी है, ये समझो। अपने लिए मैं कैसे सुखी रहूंगा, ये प्रेम नहीं है। तुम सोचो ये इष्ट तुम्हारा राम है, राम से जाओ पूछो वो कैसे प्रसन्न है, किस बात में मुझे क्या करने से प्रसन्न होगा। भरत जी की आंखें खुल गई, उन्होंने जे गुरुदेव उनके चरणों में गिर पड़े, बोले जे आज आपने हमारी आंख खोल दी। अब तक तो मैं ये सोच रहा था जे राम जी यहाँ रहेंगे तो मुझे सदा का अवसर मिलेगा और मैं बड़ा खुश रहूंगा, किंतु मैंने ये कभी नहीं सोचा कि राम को किसमें प्रसन्नता होगी। जिसका नाम है भक्ति। भरत जी ने कहा, रामचंद्र जी के चरणों में गए, प्रणाम किया, बोले हाथ जोड़ करके, भैया आप किसमें सुखी हैं ये बतलाएं, क्या करने से। उन्होंने कहा देखो राजा जातिनाथ ने ये कह दिया है कि भरत की जीत हुई, तुम्हारी जीत हो गई, और मैंने अयोध्या का राज्य सिंहासन मैंने रख लिया अपने ऊपर, अब अयोध्या का मैं मालिक हूं, राजा हूं। किंतु देखो 14 वर्ष तक मेरा प्रतिनिधि होकर और वहां पर प्रजाओं को देखो, सेवा करो, और 14 वर्ष के बाद में मैं पिताजी का आदेश पूर्ण करके अयोध्या में आकर के अपना सिंहासन ले लूंगा। बस भरत जी ने राम को प्रणाम किया, चरणों की पादुका ली और सिर पर रख करके अयोध्या गए। जब तक भरत ये सोचते थे कि रामचंद्र जी कहने पर हमारे बड़े भैया हैं, राजा होने पर मैं बड़ा आनंद होगा, मुझे आनंद होगा, किंतु अब समझा जनक जी की कृपा से नहीं, राम को किस विषय में आनंद होगा, सुखी होगा, इसका नाम है भक्ति। इसलिए व्हाट एवर यू डू टू प्लीज कृष्ण, उनसे कुछ मांगो मत, वो जानने वाले हैं सब कुछ, वो क्या नहीं दे सकते, किंतु मांगने से ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भक्त की भांति ये समझो ये कृष्ण क्या चाहते हैं और उसी बात को। हम लोगों को भी यदि दुख आता है तो समझो तो कृष्ण तो जानते ही, उनके अनजान में दुखी नहीं हो रहे हैं। तब ते इनुकम पाम सुसो में क्षमा लो भूल जान एवात्म कृतम पिपाक नमस्ते। मुक्ति पदे सदाय भाव, क्या तात्पर्य, हमें जो दुख हो रहा है अपने कर्मों के फल से हो रहा है, अथवा भगवान की यही इच्छा है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर में, ऐसा समझ करके तन मन वचन से भगवान को प्रणाम करते हुए सुख या दुख जो कुछ आ जाए सब हो। जब भक्ति होती है तो ऐसा ही होता है। आप लोग भी दुख से डरो मत,
सुख में विभोर मत हो जाओ, आनंद में जब जैसा आए समय वैसा ही उसी में प्रसन्न रह करके भगवान का भजन करते रहो।
Shri Gurudev is explaining true love by one example of Lord Ram and his brother Bharat Maharaj. When King Dashrath, in order to fulfill his two wishes of his wife Kekayi, asked Lord Ram to go to exile for 14 years. Lord Ram went to forest along Sita ji and his brother Lakshman. When Bharat and Shatrughan, who were not present in Ayodhya, they were gone to their Nanihal, what do you call it? Maternal uncle house, maternal father mother's house. And when Bharatwar and Shatrughan were called, they came to Ayodhya. They saw Ayodhya was totally deserted. And everyone was seeing upon them by hatred. Bharat could not understand what is happening. When he came to know that his mother Kekayi, she asked for two wishes from King Dashrath, that Bharat should become king and Lord Ram should go for exile for 14 years. Oh, then Bharat realized. He was shocked. He went to Chitrakoot to meet his brother Lord Ram along with his whole army. All the mothers, Kaushalya, Sumitra, etc., they also went with him. Guru Vishisht also went. And meanwhile, King Janak also came to know. He also went there. They reached there in the evening. Now Bharat, he went to Mother Kaushalya and said, Mate, you are mother of Lord Ram. If you will say, please come back to Ayodhya, son will follow your order. Please instruct him to come back. And then Mother Yashoda said, Mother Kaushalya said, how can I say this thing? I know you are ocean of love, but Ram is, he is a strong mountain of Maryada. A strong mountain of rules and regulations. He is firmly following dharma, religion, and I cannot say that give up your dharma. Then he went to Vasishtha, Guru Vasishtha. Guru Vasishtha said, I am also in the same dilemma. I am unable to fix my mind that what should be done. I cannot also instruct Ram to come back. Then Vasishtha said that King Janak is here. He is renowned. So we should take his shelter. He went to Janak and asked King Janak that right now Ayodhya is in danger. Please save Ayodhya. Tell what should be done. Then next day a big assembly took place. All the mothers were there. The whole Ayodhya was there. King Bharat was also there. Raja Ram was also there. And then Raja Janak, King Janak, he saw and asked to Lord Ram, if I give judgment, will you accept it? And then Ram said, oh, you are like my father, why should not I accept it? Then he saw towards Bharat, Bharat said, "Oh, you are also like my father. I will accept whatever you say." Then King Janak, he started to meditate upon his guru Shankarji, and he said, "Whatever his guru Shankar will instruct him, he will give the judgment." And then Shankarji said, by getting the instruction from Shankarji, King Janak said, "Oh, Bharat, you are victorious. You won the discussion. But because your love is full of ocean, it's so deep and vast. But there is also a rule and regulation of love. There is also nature of love. We should understand. When you love someone, you have to ask your lover that what does he want, not that what do you want. This is the nature of love." When Lord Ram heard this thing, and Bharat went to Lord Ram, and he paid his obeisances to Lord Ram. Ram said, "Oh, you have won, so I accept my kingdom." And Bharat said, "No, brother, you have won. So far, I was mistaken. Now I ask you, what do you want?" Then Lord Ram said that, "I accept my kingdom back. But you want that what I want? I want to go for forest 14 years. You go to Ayodhya and be my representative." Then Bharat took sandals of Lord Ram and he went to Ayodhya. And he did his, ruled Ayodhya. So Srila Gurudev said that we should not only see what does I want. When Bharat was thinking that Lord Ram will come to Ayodhya and he will be able to serve his brother, he will be very happy. That time it was not bhakti. When Bharat thought, "No, but Lord Ram wants, that I will do, that is bhakti." Therefore, we should be very much careful to know what is bhakti. When we are unhappy, when we are misery, we should not pray for removing of this misery. Try to understand. Krishna knows everything. Does he not know that you are in trouble? He knows it. So what to do? We should accept it, that these miseries are coming because of our karma, or these are also mercy of Krishna. We should not become overwhelmed by enjoyment and happiness, and we should not become totally immersed in the misery. We should always pray to Krishna for his happiness. This is true love.
Bhakti ke tatpamya se paanch prakar ke bhakta batlaye gaye hain. Gyani bhakta, तत्व भगवान के तत्व को जानने वाले, जैसे प्रहलाद महाराज, सनक सनंदन, सनत कुमार। दूसरे शुद्ध भक्त, अम्बरीश शुद्ध भक्त है, अपनी सारी इंद्रियों से ही भगवान की सेवा करते हैं और उनका राज्य का ब्राह्मण देखते हैं। तीसरा प्रेमी भक्त, हनुमान जी प्रेमी भक्त है। उसके बाद में प्रेम पर भक्त पांडव लोग हैं और प्रेमातु भक्त उद्धव जी हैं। प्रहलाद महाराज अपने भगवान को भूख नहीं लगती, खिला नहीं सकते, उनका पैर भी नहीं दबा सकते हैं, केवल अस्तव स्तुति करेंगे। और इनसे श्रेष्ठ अम्बरीश महाराज सारी इंद्रियों से, मन से भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करते हैं, हाथ से भगवान का अर्चन करते हैं, पैर से भगवान के धाम में जाते हैं, कान से उनकी कथाओं को सुनते हैं, समस्त इंद्रियों को, 11 इंद्रियों को लगा दिया है, इसलिए इनको श्रेष्ठ माना गया। और इनसे श्रेष्ठ हनुमान है, बिना भगवान की सेवा के रह नहीं सकते हैं। किस प्रकार लंका गए, सीता जी का पता लगाया, श्री रावण को मारने में सहायक हुए, सब समय ही उनकी सेवा में रहते हैं, बिना सेवा के नहीं रहते। और उनसे भी किंतु हनुमान जी राम को अपना जूठा नहीं खिला सकते, अलंकर उनके साथ में एक साथ में बैठ नहीं सकते, बहुत सी सेवा में बाधाएं हैं उनको, जहां सीता जी रहेंगे वहां पर नहीं जा सकते, उनको आलिंगन नहीं कर सकते, इसलिए इनसे श्रेष्ठ पांडव लोग हैं। पांडवों के साथी बन गए नौ पर, रथ को हाँकने लगे, उनके घोड़ों को धोते हैं, उनकी कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी कर ली, कृष्ण उनके साले बन गए। इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण एक थाल में खाते हैं जूठे, एक ही पलंग पर सोते हैं, इसलिए हनुमान से भी श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ हैं उद्धव जी, कृष्ण के सखा हैं, मंत्री हैं, सेवक हैं और सेनापति हैं, सब कुछ है, इसलिए उनसे श्रेष्ठ हैं। और उद्धव जी की वंदना करते हैं वे लोग ब्रजवासी सभी, कृष्ण के सखा कृष्ण से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं, जो कंस इत्यादि को सहज ही पार डाला, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को सात दिन तक के कमली पर उठाए रखा और उसको सिद्धांत उठाकर पटक देता है, और कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। ये सखा लोग कृष्ण से जूठा खाते हैं, अपना जूठा उनके मुख में दे देते हैं, ऐसा सौभाग्यशाली है। और इनसे भी अधिक भक्ति वाली कौन है, यशोदा मैया और नंद बाबा। नंद बाबा की खड़ाऊं उठाकर सिर पर रखते हैं पादुका और ठेई ठेई नाचते हुए आते हैं, और पिताजी का खड़ाऊं कौन, पर ब्रह्म समस्त अवतारों के लिए अवतारी हूं ये। और यशोदा जी जिनका दूध पान करते करते थकते नहीं, यशोदा जी प्रेम से बांध देती हैं उनको, कहती हैं मेरे कान पकड़ो, फिर नहीं करेगा मक्खन नहीं चुराएगा, अपने घर में खूब खाओ, किसी चीज की कमी नहीं है, तो दूसरों के घर में चोरी क्यों करता है। कृष्ण रोते हैं ऐसे। और इनसे भी गोपियां कैसी हैं, ब्रज की न पारे हम निर्वत संजुजा, हे गोपियों तुम लोगों ने हमारे लिए पति पुत्र घर बार धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा के लिए आ रही हो, मैं तो पिता नंद बाबा यशोदा मैया को भी नहीं छोड़ सकता, अपने सखाओं को नहीं छोड़ सकता, और जो भक्त हमारी भक्ति करते हैं उन लोग किसी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारा चिरणी हूं, ब्रह्मा का दिन पा करके भी आयु पा करके भी मैं तुम्हारे ऋण से उठ नहीं सकता, तुम लोग साधु हो इसलिए तुम यद्यपि हमको ऋण से मुक्त कर देगी, मैं फिर भी तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा। उद्धव जी कहते हैं आशा महो चरण ऋण युषा महम श्याम वृंदावने की मूलमलतौ से जीना जब दुष्जन स्वजन आद्य पथम चहित्वा हे जय मुकुंद पद में सुख भी मिल। यदि मेरा जन्म ब्रज में एक क्षीण गुल्म के रूप में भी हमारा जन्म हो जाए और उस पर गोपियां चले उनकी धूली लग जाए, मैं अपने जीवन को कृतार्थ समझूंगा। आज तक श्रुतियां वेद के मंत्र भी उनकी उपासना करते करते थक गए, किंतु वो नहीं टूटते और वे गोपियों की मुक्ति में है। गोपियां कहती है उठो, तो उठते हैं, बैठते हैं तो और वंदे नंद ब्रजे स्त्री नंद पाद रेणु अभिक्षण जासाम हरि कथो गीत पुनात गोनत त्रयम। ओ गोपियों ने कृष्ण के विरह में जो गान किया, भ्रमर की गोपी गई अद्भुत भाग श्रीमद भागवत के ये रत्न है। राजपंच अध्यायी ये पांच रत्न है, प्राण के समान है। भ्रमर गीत और इन गोपी गीत इत्यादि को हटा दिया जाए, वेणु गीत, तो भागवत का रस ही निकल जाएगा। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, व्रज की गोपियों, तुम्हारे चरण की एक धूली भी यदि बन जाऊं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। सारा विश्व तुम्हारे गानों को सुनकर के उनका जीवन ही सफल हो गया है। इसलिए ये गोपियां व्रज की हैं, साधारण नहीं, कृष्ण को भी वशीभूत करने वाली है। यही प्रेम की भक्ति की अंतिम सीमा है। और इन गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी सर्वश्रेष्ठ है। उनमें जो ऐसे भाव है जो ललिता विशाखा जी में भी नहीं है, कृष्ण में भी नहीं है। उनमें ऐसा मदनक्ष भाव है जो कृष्ण उनकी गोदी में है, कृष्ण की गोदी में बैठी हैं। और कृष्ण कहां गए, हाय हाय कहां गए, प्रेम में अधीन हो जाती है। इसको मादानक्ष भाव कहते हैं, प्रेम वैचित्र इत्यादि के अद्भुत अद्भुत भाव है। समय नहीं है, यही पर अभी समाप्त करना है, 8 बज गया है। इसलिए यदि फिर कभी समय होगा तो इसके आगे गोपियों का चरित्र वर्णन करेंगे। अद्भुत चरित्र है, उसके बिना भागवत भी नहीं।
There are five of devotees categorized according to their devotion. Number one is Jnani Bhakta. They know the tattva principles like Prahlad, Sanat Sanandan, Sanatan. And then number two, Shuddh, pure devotee like Amrish. Amrish is serving Krishna by his all the senses. Number three, Premi Bhakta like Hanuman. He cannot live without serving Ram. And superior to that him is Premapar Bhakta like Pandava. And the last is Prematur like Udhavji. So Gurudev is giving how they are superior one by one. Jnani Bhakta, he is having mixed feeling of Jnana. He knows the supremacy of Lord. Prahlad is devotee of Narasingha, but his Lord does not have any hunger, any need, so he cannot serve him. He just prays to him. He offers only his prayer. But Amrish Maharaj is superior, because he is serving Lord by his all the senses. And higher than Amrish Maharaj is Lord Hanuman. We see, he went to Lanka, he did all the services of Ram. He cannot live without Ram's service. But his service is also limited. He cannot embrace Ram. He cannot give his remnant to Lord Ram. Lord Ram is with Sita ji, he cannot enter there. So, superior to his love, the devotee that Pandava. Arjun is so dear to Krishna that he got his sister married to Arjuna and became his sala, brother-in-law. Krishna is sitting on the same bed and eating with Arjuna. As much as he became his chariot driver, he is making all his horses work. So much service he is doing of Pandava. And from Pandava, the higher devotees are Prematur, like Udhavji. Udhavji is so much higher that he is counselor of Krishna, he is brother of Krishna, he is always with Krishna. Wherever Krishna goes, he takes Udhav with him.
as much as Krishna sent Uddhava to Vrinda to console his mother, father and Gopi. But what Uddhava is saying? Uddhava is saying that the highest class of bhakti, love, is of Brajavasi who live in Braj. So Brajavasis are so much having advanced love for Krishna that there is no accountability of it. Krishna friends, Sri Dham, Krishna has lifted Giriraj Govardhan on his small finger of left hand. But Sri Dham playing with Krishna, he just defeats Krishna in wrestling, and Krishna is very happy by this defeat. And Mother Yashoda, she is chastising Krishna and binding Krishna. And Krishna, for his father Nanda Baba, he takes his foot on his head, the Supreme Personality of Krishna, he takes the shoes of his father Nanda Baba on his head. So great him. But on the top of it, the love of gopis, the Braj dancers, it is so much that Krishna himself declared that I cannot be indebted for the love you have given to me. You have given up everything for me. I cannot give up anyone in my life. I cannot give up my friends. I cannot give up my parents. Even the new bhakt, if he cries for me, I go for him. You are so great. You may exempt me from my debt, but I will always be in your debt, in the debt of your love. Uddhavji is praying that I wish to become a blade of grass in Braj, so that when these Braj gopis, they walk, their foot dust should fall on me. He is praying that these Braj gopis who have sung such a nice song of Srimad Bhagavatam, like Bhramar Geet, Venu Geet, Gopi Geet, these songs in Srimad Bhagavatam is the life and soul of Srimad Bhagavatam. And he is praying that if a single dust of Srimati Radharani falls on his head, he will be highly obliged. So this is the love of devotees of Braj, and on the top of it, the Radharani's love, it reaches to the highest extent of Mahanakya Mahabhav, where no gopi can reach. Even Krishna falls short of this love. So Krishna, Radharani's Madanakya Mahabhav, it really binds Krishna. As much when Radharani is in the lap of Krishna and she feels the mood of the creation, oh, where Krishna has gone. This is indescribable. There is so much to say, but time is short. We should understand the highest class of love, which is the real definition of pure bhakti. Yeah.